मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 23 सितंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों को शायद कल का मेरा ऑडियो याद होगा जिसमें मैंने पल भर में सदियों को जी लेने की बात कही थी, और सच पूछिए तो इसी पंक्ति को लेकर के मेरे पास कुछ मेल आए हैं और उस मेल में जो बातें मूलभूत रूप से पूछी गई हैं वह कुछ इस तरीके की हैं कि सर भला ऐसा कैसे संभव है कि कहाँ तो छोटा सा एक पल जिसका पता भी नहीं चलता है कि वो कब आता है और कब चला जाता है, और कहाँ सदियों का वक्त यानी कि 100 साल, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक पल में सदियों को जी लें। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात पूछी है वो बिल्कुल सही है और ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह बात आती ही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस बात को समझाने के लिए प्रेम की जो फिलॉसफी है, इसका जो दर्शन शास्त्र है, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें करने जा रहा हूं। राइट, पहली बात तो यह कि देखिए, जब हम प्रेम शब्द अपने दिमाग में लाते हैं तो हम सबके दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर दिमाग में प्रेम का मतलब है रोमानी प्रेम। रोमानी प्रेम, लड़के का लड़की के प्रति, लड़की का लड़के के प्रति, जिसे हम रागात्मक प्रेम कहते हैं। साहित्य में इसके लिए शब्द दिया गया है, रागात्मक प्रेम। और हमें ऐसा लगता है जैसे कि जिस प्रेम से हम सब परिचित हैं, जिसके बारे में इतनी सारी बातें की जाती हैं, जिसका हम सब लोग अनुभव करते हैं, वह शायद यही प्रेम है। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि नहीं, प्रेम एक भावना है, एक तत्व है। यह भावना, यह तत्व किसी शरीर तक सीमित नहीं है, इसका फैलाव बहुत व्यापक है। अगर वैसे भी आप सामान्य रूप में अगर प्रेम शब्द के समानांतर इसी के जैसे, इसी के प्रजाति के कुछ दूसरे और शब्द ढूंढना चाहें तो आपको शब्द मिल जाएंगे, और बोलचाल में हम उन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे वह मगन हो गया है, वह एकदम मगन हो गया है। कैसे मगन हो गया बताइए? तो कौन सी चीज है जो उसे मगन बना रही है? उसे तो इस बात की धुन लग गई है। वह कौन सी चीज है जो उसे धुन में शामिल कर रही है, उसको धुन लगा रही है? ये सोचने की बात है। मुझे लगता है कि इन सब पर हमें सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार की शब्दावलियां हैं। हम कह देते हैं, यार तुम लगता है कहां खो गए हो। वो कहां खो गया है? वो तो है शरीर के रूप में, तो वही मौजूद है। क्या खो गया उसका? उसका दिमाग खो गया है ना, वो किसी एक बात में लग गया और ठीक इसी तरह से केंद्रित हो गया। अगर हम कहते हैं कि वो बिल्कुल एक बात में लग गया, एक ही के पीछे पड़ गया, एक ही बात की उसको धुन लग गई है, इसका मतलब है कि वो कहीं एक स्थान पर, एक बिंदु पर केंद्रित हो गया है। और जब हम कहते हैं केंद्रित हो गया है, तो वो क्या केंद्रित हो गया है? उसकी चेतना केंद्रित हो गई है, जिसे आप कह लीजिए सोचने समझने की क्षमता वहीं तक सीमित हो गई है। उसकी भावनाएं केंद्रित हो गई हैं, मतलब सारी भावनाओं को उसने उसी बिंदु पर ला करके संग्रहित कर दिया है। तो दोस्तों, ये सामान्य से उपयोग में लाए जाने वाले शब्द हैं, और ये सभी के सभी शब्द इनफैक्ट प्रेम की ही प्रजाति के शब्द हैं। अब आइए इसके दूसरे पक्ष को हम देखते हैं। फोन पर मेरी बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, वो स्टूडेंट 23-24 साल का स्टूडेंट है, जिसने हम लोगों का ऑनलाइन का IAS का कोर्स भी लिया हुआ है, और वह मुझसे बहुत प्रभावित है। वो खुद ही कहता है कि सर मैं बहुत आपका फैन हूं और मैंने आपकी 15 किताबें पढ़ ली हैं, और कुछ किताबों को तो मैंने 3-3, 4-4 बार पढ़ लिया है, और बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं IAS बन जाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आशीर्वाद है कि आप, बिल्कुल शुभकामनाएं हैं कि आप IAS बने, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपने जो ऑनलाइन कोर्स लिया है, साल भर हो गए हैं, तो उसमें से आपने कितने लेक्चर सुने? उन्हें 1000 घंटे का लगभग लेक्चर सुनना है। बोला कि नहीं सर, लेक्चर्स तो मैं नहीं सुन पाया हूं, ज्यादा मुश्किल से 30-40 घंटे का ही लेक्चर सुना होगा। मैंने कहा कि क्यों, क्या बात हो गई, एक साल हो गया और 30-40 घंटे का आपने लेक्चर सुना है? उन्होंने कहा कि सर दरअसल मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कहा अच्छा, और क्या करते हो? मतलब कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? बोले नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ IAS की तैयारी कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ IAS की तैयारी कर रहा हूं। मैं कहा तो फिर प्रॉब्लम क्या है टाइम मैनेज करने में? बोले नहीं सर, अभी अब जब कोरोना हो गया था ना, तो उस समय मैं अपनी बहन के यहां चला गया था और फिर वहीं रुक गया, वहीं रुकना पड़ा, मैं अपने घर नहीं लौट सका, तो टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि भाई जब बहन के घर में थे तब तो और ज्यादा टाइम मैनेज हो सकता था, क्योंकि लेक्चर सुनने के लिए तो केवल स्मार्टफोन की जरूरत होती है। फोन तो तुम्हारे पास था ना? उसने कहा नहीं नहीं सर, फोन तो मेरे पास था। तो मैं कहा नहीं क्या बहन के यहाँ कुछ बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था दिन रात, कि तुमको समय नहीं मिल पाता था? तो बोले नहीं नहीं सर, बहन के यहाँ तो क्या काम करना है। तो मैंने कहा कि वहां भी तो तुम ज्यादा ज्यादा 6 महीने ही रहे होगे, उतने भी नहीं रहे होगे, बाकी तो समय तुम अपने घर में ही होगे, तो फिर क्यों टाइम मैनेज नहीं हुआ? बोले कि नहीं नहीं सर, बस टाइम मैनेज नहीं हुआ। दोस्तों अब आपको सोचना यहां यह है कि ये टाइम मैनेज क्यों नहीं हो रहा है। देखिए मैंने जो उनसे बातें की और जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल ज्यों कहते हो आपके सामने रखा है, लेकिन समस्या है। आप ये बात समझिए, आप हम उनको नकार नहीं सकते कि ये लड़का ऐसे ही है, इससे बात करना बेकार है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, नॉट एट ऑल। हमें उसकी मनोवैज्ञानिक समस्या को समझना पड़ेगा कि उसके अंदर प्रबल इच्छा है कि वो IAS बने, उसी के शब्दों में कि मुझे तो बनना ही है, ये मेरे जीवन का एकमात्र सपना है और मुझे किसी हालत में करना ही है। तो जब वो कह रहा है कि मुझे किसी भी हालत में ये करना है, मेरे जीवन का ये एकमात्र सपना है, तो ये क्या है? ये उसकी इच्छा है, ठीक है, लेकिन इच्छा से तो कुछ होता नहीं है। उस इच्छा को कर्म में परिवर्तित करना होगा, इच्छा के अनुकूल आपको काम करना होगा। अब सवाल यह है कि इच्छा के अनुकूल ये जो काम करने की जो बात है, जो मैकेनिज्म है, वो क्या है? वो कौन सी चीज है, वो कौन सा तत्व है जो आपकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको एक्टिव कर दे? दोस्तों मुझे लगता है कि वह है प्रेम। प्रेम, यहां हमें प्रेम को समझना होगा। उसको अपनी इच्छा से प्रेम नहीं है, यानी उसका जो पर्पज है, जीवन का जो उद्देश्य है, या उसने जो अपना सपना बना रखा है, वो सपना तो है, इच्छा है, लेकिन अपने सपने और अपनी इच्छा से जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। क्योंकि जैसे ही इच्छा से प्रेम जुड़ जाती है, सपनों से प्रेम जुड़ जाता है, जाकर मिल जाता है, इन दोनों का संयोग हो जाता है, आप फिर चुप बैठ ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते। वो आपको कर्म के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि वो आपको उकसाएगा कि नहीं आपको इससे प्रेम है ना, तो आपको तो इसे हासिल करना ही करना है, और इसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, और आप करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स मैं देवदास जैसे चरित्र की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। शरद चंद्र जी ने देवदास का एक चरित्र रचा है जो खासकर प्रेम में पागल होकर के घूमता है और एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि पागलपन का ही जीवन जीता है, नॉट एट ऑल। प्रेम आपको एक्टिव करता है, प्रेम में इतनी ताकत है कि आप कल्पना करके देखें कि आप एक स्थान को प्रेम करने लगते हैं, आप एक पत्थर की प्रतिमा जो है, संगमरमर की प्रतिमा है, आप उसे प्रेम करने लगते हैं, उसके प्रति श्रद्धा भाव निवेदित करने लगते हैं, तो वह आपके लिए आध्यात्मिकता का केंद्र बन जाता है। क्या बिना प्रेम के यह संभव है? नॉट एट ऑल। तो दोस्तों यह प्रेम का दर्शन शास्त्र। प्रेम एक ऐसा अद्भुत तत्व है, एक ऐसी आप यूं कह लीजिए ऊर्जा का एक ऐसा भंडार है कि जैसे ही आप उसके मुंह को खोलते हैं, ऊर्जा झरझरा करके बहने लगती है आपके ऊपर, उसका लगातार आप यूं कह लीजिए कि उसकी वर्षा होने लगती है, आपको चुप नहीं बैठने देगी। और मुझे लगता है कि अगर वो आपको चुप बैठने दे रही है, या यूं कह लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं तो उस करने से रोक रही है, तो यह प्रेम तो मुझे लगता है कि नहीं है, कुछ और है, और इसके बारे में हमें समझना होगा। तो फ्रेंड्स अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।